हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय से श्लोक संख्या 36 एंड 37। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोधलीलया गृहीतशक्ते त्रितयाय देहिना अन्तर्भवाय नुपलक्ष्यवर्त्मने यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अध्याय दो, दूसरा स्कंद, अध्याय छह, श्लोक संख्या 36। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के अतिरिक्त जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। भगवान की महिमा असीम है, भगवान को कोई जान नहीं सकता। जैसा पहले बताया कि भले ही मैं सारे वेदों का जानने वाला हूँ, शिष्य परंपरा में बहुत दक्ष हूँ, बहुत सारी तपस्याएं मैंने की हैं, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ आत्म साक्षात्कार के ज्ञान में, लेकिन फिर भी मैं भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान नहीं रखता, क्योंकि वो स्वयं मेरे आधार है। लेकिन भले ही जीव भगवान को पूरी तरह से जान नहीं सकता, परंतु जीव इतना जरूर जान ले कि यदि उसको अपना कल्याण करना है, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई भी जीव की गति हो ही नहीं सकती। एक जीव की एक ही मंजिल है कि उसे भगवान के धाम में भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो उसके लिए तो उसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। इसी बात को बताते हुए श्लोक नंबर 36 में ब्रह्मा जी नारद को बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, न तोस्म्यहं चरणं समीयुषां भावच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलं योह्यात्ममाया विभवं स्मपार्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परिकुत न तोस्म्यहं तत् चरणं समीयुषां भावच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परिकुत। ब्रह्मा जी कहते हैं, न तोस्म्यहम चरणम समीयुषाम, न तोस्म्यहम, न तो मतलब नमस्कार करता हूँ, अस्मि मन में अहम, मैं अस्मि मन करता हूँ, अहम मन में मैं नमस्कार करता हूँ तत्चरणम, तत् मन उस भगवान के चरणम मन चरणों पर, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है भगवान की शरण में जाने के, इसलिए क्योंकि मैं कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान के चरणों पर सादर नमस्कार करता हूँ, समीयुषा और भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। भावच्छिदम, और भगवान के पास जाने से क्या होगा, भावच्छिदम अर्थात जन्म मरण के चक्कर को रोकने वाले हैं, वो हमारे भाव रोग को समाप्त करने वाले हैं, वो हमें जन्म मरण के चक्कर की श्रृंखला से बचाकर अपने धाम स्थान देने वाले हैं। इसलिए जो भगवान की शरणागति में आ जाता है, जो भगवान को नमस्कार करता है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं, सौ अश्वमेधी पुनरेति जन्म, अगर कोई सौ अश्वमेध भी यज्ञ कर लेता है ना, तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, एक बार जो हृदय से कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर देता है, कृष्ण को प्रणाम कर देता है, फिर भावच्छिद्धम उसके जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, न पुनर्भवाया, वो वापस इस भवसागर में नहीं गिरता। भावच्छिद्धम स्वस्थ ययनम, स्वस्थि अयनम का मतलब होता है समस्त सुख की अनुभूति, क्योंकि जीव जब तक इस भौतिक जगत में रहेगा तब तक तो त्रिताप उसे सताते रहेंगे। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेशों में वो सदैव दुखी रहेगा, लेकिन जब उसका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा, फिर स्वस्तियैनम अर्थात सारी सुख की अनुभूति होगी। सुमंगलम, भगवान के चरण कमल मंगलाति मंगल है, सारी शुभ प्रदान करने वाले हैं। और योग्यात्म माया विभवम, योग्यात्म माया, यो मना जो, ही मना निश्चय ही, आत्म माया मतलब व्यक्तिगत शक्ति, विभवम शक्तिया, स्म निश्चय ही पर्यागत, पर्यागत मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो भगवान, उनकी इतनी शक्तियां हैं, उनकी यात्म माया जो भगवान की माया है, विभवम स्म पर्यागत, भगवान की माया बहुत ही असीम है, वो स्वयं भी पर्यागत मतलब अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान को स्वयं अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं है, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की शक्तियां सीमित नहीं है, क्षण प्रतिक्षण भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियां प्रतिक्षण वर्धमान है। तो भगवान की शक्तियों का अनुमान तो स्वयं भगवान को भी नहीं। यथा नब स्वांतम अथा परे कुतः, जिस प्रकार आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता है, वैसे ही भगवान की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, असीम शक्तियां हैं। तो भगवान स्वयं भी अपनी शक्तियों की सीमाओं को नहीं जानते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते, तो भला दूसरे क्या लगा सकते हैं? इसलिए भगवान को समझने का नहीं, भगवान की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब जीव भगवान की शरण में आता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर भगवान क्या करते जानते हो? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। यदि कोई जीव प्रेम के साथ कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम को भजता है, फिर क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्ण कहते हैं फिर मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयान्ति, तब वो मुझे समझ सकता है। ये जो हमारी कुंठित इंद्रियां है ना, वो भगवान को नहीं समझे, ये बुद्धि भगवान को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कहा जाता है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि नव ग्राह्यत इंद्रिया, इन इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की शक्ति को समझा नहीं जा सकता। अगर समझना है तो क्या करो? सेवान मुखो ही जीवादो स्वयम एव सुफूर्ति, तुम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा दो, बस इस जीवा को भगवान के पवित्र नाम का रसास्वादन करते हुए, भगवान के पवित्र प्रसाद का आस्वादन करके जब ये जीवा पवित्र हो जाएगी ना, उससे फिर हृदय पवित्र होगा। और फिर जब जीव का हृदय पवित्र होगा ना, तब भगवान क्या करेंगे? स्वयं एव सुफूर्ति, वो स्वयं आपके सामने इतना निकट से प्रकट हो जाएंगे कि वो आपको समझ में आने लगेंगे। और समझ में क्या आना है? यही कि तुम खुश रहोगे ना, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम्हें प्रसन्न करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि मेरी प्रसन्नता तुम्हारे से होकर मुझ तक आएगी। इसलिए जीव को सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए, उसी से उसका मंगल होगा, उसी से उसका कल्याण होगा, उसी से उसका जीवन पवित्र होगा, उसी से इसका जीवन आनंदमय होगा। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उनके चरण कमलों में आत्म समर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से उबार सकते हैं। ऐसा आत्म समर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश में अपने विस्तार की सीमाओं का अनुभव नहीं लगा सकता। अतः जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम है तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के सर्वपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तथा सर्वथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, और क्या आप किससे सबूत मांगते हो, किससे पूछना बाकी रह गया। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जो सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध है, जो समस्त यज्ञों में सर्वोच्च यज्ञ करता है, जो सर्वोच्च विद्वान है, जो सर्वोच्च तपस्वी है, उन्होंने बता दिया कि आपका कल्याण तब होगा जब भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करेंगे। बस यहाँ तक सुनने के बाद जीव के पास और कुछ नहीं है। यदि वो कल्याण चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नव युवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक यानी सलाहकार होते हैं, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के भी पिता हैं। वे उस मनु के पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव इस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों का नाप खोज ना करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है कि परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेता शुद्ध उपनिषद में बताया गया है, वे सबों से महान हैं और अन्य सब, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो कम बुद्धि वाले हैं वे ही अपने को सर्वो सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे से आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान में से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्रा वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त वैज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्रा के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत ही उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के कुछ माह के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाए, प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश है। श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आजकल जीवों को बस यही लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा हम फॉरेन कंट्रीज में आए, धन कमाएं और बहुत बहुत लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए। लेकिन कब तक ये जिंदगी क्या संभल संभल के रख सकते हैं? लेकिन ये जितनी भी फैसिलिटीज संसार के हैं वो मुझे हमें वास्तविक आनंद नहीं प्रदान कर सकेंगे। इसलिए प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों का हल केवल यही है कि हम भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यही कहा, समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। और यहाँ पर भागवत में ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण यानी शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जीव के पास दो ही ऑप्शन है, या तो शास्त्र और आचार्यों गुरु साधु और शास्त्र के आदेशों का पालन करके भगवान की शरण में जाए। अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं करता तो भौतिक प्रकृति के नियम जबरदस्ती उसे अपने आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देंगे। अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो भगवान को या भौतिक प्रकृति को। भौतिक प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरध्यया। मेरी इस प्रकृति यानी माया को पार करना बहुत कठिन है। यदि कठिन कार्य को सरल बनाना चाहते हो तो उसका आसान सा ये उपाय है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जीव के पास यदि सुख समृद्धि आनंद का कोई एक विकल्प है तो वही कि हमें भगवान की शरण में चला जाना चाहिए, अन्यथा माया हमें दबोच लेगी। इसी शास्त्र कहता है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे। जैसे ही जीव सोचता है मैं कृष्ण से बहिर्मुख होकर आनंद करूंगा, जैसे ही ये इच्छा उसके मन में आती है, निकट स्थिति माया दारों चपटिया धरे, निकट ही माया खड़ी होती है, उसको दबोच लेती है। इसलिए श्री रूपा जी के तथा में भिन्ना प्रकृति अष्टदा श्रीमद्भगवद्गीता 7.4 अर्थात आठ विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव भगवान भौतिक प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भगवद्गीता 9.10 में दावा किया है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ यानी परा शक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे तो प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिद्धम यानी समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त है। स्वस्त्ययनम अर्थात समस्त सुखों की अनुभूति तथा सुमंगलम अर्थात समस्त कल्याण का स्रोत है। अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है। यद्यपि आकाश से भी बढ़कर हैं, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना के द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप सकते, अन्यों की तो कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतएव वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ जाता है, और भगवान इसे फिर से मापते हैं। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती रहती है, यहाँ तक कि यह स्पर्धा कभी रुकती नहीं है और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की हलादनी शक्ति श्रीमती राधारानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया कि जीव भगवान की शरण में आने के बाद उतना आनंद प्राप्त करता है, उतना सुख प्राप्त करता है, इतना मंगलमय जीवन हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जीव कितना मूर्ख है कि उस असीम आनंद, असीम सुख, असीम आह्लाद को छोड़कर वो भौतिक जगत की बिल्कुल तुच्छ सुख की ओर आकर्षित होता है, जहाँ पर सुख के नाम पर केवल धोखा है। भौतिक जगत में सुख की कोई वस्तु है ही नहीं। जो सुख लगता है ना, वास्तव में वही दुख का कारण होता है। जैसे रेगिस्तान में ऊंट जब पेड़ के कांटीले वृक्षों को खाता है तो उसके कांटों के कारण उसकी जीव से जो ब्लड निकलता है उसी से वो आनंद का अनुभव करता है। ये जीव भी उसी ऊंट की तरह इस भौतिक जगत में उसके दुखों के कारण जो उसका खून निकलकर उसके मुख पे लगता है, वो समझता है कि ये आनंद है, परंतु ये आनंद नहीं है, वास्तव में ये कष्ट है। हम अपने जीवन को कष्टमय करते हैं जब हम भगवान से दूर जाते हैं, क्योंकि माया के कारण हम कितना दुखी हो रहे हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं, कितनी बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहे हैं, इसका तो हम स्वयं भी अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन आज भगवान ने मनुष्य देह में दिया है, और मनुष्य देह में हम इस तुच्छ भौतिक सुख को त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति होकर असीम आनंद का आस्वादन करने के योग्य हुए हैं। इसलिए हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए और भगवान की शरण में जाकर भौतिक माया से दूर रहकर वास्तविक आनंद का आस्वादन करना चाहिए। आगे भगवान ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 37 में कहते हैं, नाहं नयूयं यद्रितां गतिं विदुर नावामदेव किमुता परिसुरा तन्माययामो हितबुद्धयस्त्विदम्।
विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर् न वामदेव किमुता परिसुरा तन्माययामो हितबुद्धयस्त्विदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे नाहं न यूयम्। ब्रह्मा जी कहते न हम यानी मैं भी नहीं, न यूयम अर्थात तुम सब मेरे जितने पुत्र हो वो भी नहीं। यत ऋतम, यद ऋतम गतिम विदु, यत मतलब जिन जिनका, ऋतम अर्थात वास्तविक, गति मतलब गति, विदु जानते हैं मतलब वो भगवान जिनकी गति को, जिनके ऐश्वर्य को और उस उनके शरण में आने के बाद जो जीव को आनंद मिलता है उसको ना तो मैं जानता हूँ हे नारद, ना तो तुम जानते हो और ना ही मेरे दूसरे जितने भी पुत्र हैं वो भी नहीं जानते हैं। न वामदेव, वामदेव अर्थात शिव जी भी नहीं जानते। किम उत, किम मतलब क्या, उत मतलब दूसरे, अपरे अन्य सुरा देवता, शिव जी जो महादेव हैं, समाधि में रहते हैं, परम वैष्णव हैं, वो नहीं जानते। तो दूसरे देवता जो स्वर्ग में सदैव भोग विलास में लगे रहते हैं वो भला कैसे जानेंगे। तत् माया मोहित बुद्धया, तत् मतलब क्यों नहीं जान पाते, तत् मतलब भगवान की माया से मोहित है। हम सब भगवान की माया से मोहित हैं, बुद्धया ऐसी बुद्धि से तू, तो फिर हम इस मोहित बुद्धि से भगवान को कैसे जान सकते हैं। तन माया मोहित बुद्धस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षते। विनिर्मितं का मतलब है जो उत्पन्न किया जाता है चाह भी, आत्मसमं अपनी शक्ति के बल पर भी चक्ष्महे देखते हैं। अर्थात वैसे तो भगवान की माया असीम है, हमारी जो बुद्धि है वो तो माया के द्वारा मोहित है, इसलिए हम भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में जो आनंद है उसका पूर्ण अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हम तो माया के द्वारा मोहित है। इसे हम कितना कर सकते हैं, वी चक्ष में जितना हम अपनी आत्मसमम, अपनी सीमित शक्ति जितनी हमारे अंदर है, जितना हमारा अनुभव है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उसी के अनुसार हम उस असीम आनंद को, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और उतना ही बखान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इसको, इस व्यक्त विश्व को हम देख सकते हैं। तो हम कंप्लीट भगवान के विश्व में ना समझने के योग्य हैं, ना मैं समझ सकता हूँ नारद, न तुम समझ सकते हो और मेरे दूसरे संतान भी नहीं समझ सकते, देवों में देव महादेव भी नहीं जान पाते, तो दूसरे देवता भला क्या जान सकते हैं। और बस सब करते कितना है, जितना उनकी सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है। अनुवाद देखिए, जब न शिव जी न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों यानी द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, स्वयंभू, शंभू, नारद। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो 12 महाजन हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मा जी का, उसके बाद नारद का, उसके बाद शंभू अर्थात शिव जी का, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर। संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मनुष्य मध्य लोक के निवासी हैं और असुर अधोलोक के निवासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार के मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दर्शनों की होती है, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं, अतः ये सब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता 7.13 में होता है। त्रिविर गुणमयर भावे एभि सर्वम इदम् जगत्। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के अति अथक की गणना अपने ढंग से करता है, लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे। एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा बनाकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं, जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थ बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतएव छोटे से मस्तक वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। श्री प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी ये सोचते थे कि मैं तो बहुत महान हूँ। चले गए द्वारिका और बोले मुझे भगवान से मिलना है। बड़ी मुश्किल से जब भगवान के दर्शन हुए तो देखा करोड़ों ब्रह्मा, जो मैं तो छोटा सा ब्रह्मा हूँ, एक 4 सर वाला हूँ, लेकिन कुछ 1000 सर वाले, कुछ 10000 सर वाले, कुछ 20000 सर वाले और कुछ लाखों सर वाले ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर बैठे थे। तो जब इतने बड़े महान ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, वो स्वयं कहते हैं कि ना हम न योयम। ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं तो बेटा मैं भी नहीं जान सकता, तुम भी नहीं जान सकते, न वामदेव शिव जी भी नहीं जान सकते। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के क्षुद्र वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो एक छोटा सा मस्तक रखते हैं, वो भला क्या भगवान को जानेंगे। अतः भगवान कहते हैं मोहितम नाभि जानाति मामेव्यः परमव्ययम्। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि मैं इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतएव मनुष्यों को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेश का अनुगमन करे, न कि क्षुद्र मस्तक के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो। यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं, जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत देव रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव का कल्याण तभी होगा जब वो भगवान की शरण में जाएगा, और भगवान को समझने का एक ही तरीका है कि हम ब्रह्मा, शिव, नारद ऐसे महापुरुषों के कथनों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का आदेश समस्त शास्त्रों में और ब्रह्मा, नारद, शिव सबने दिया है। तो हमारे पास कल्याण, अपना कल्याण करने का, अपने आनंद प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि हम इन महापुरुषों की बात का, इन महाजनों की बात को स्वीकार करें। जैसे माता केवल पिता का पता दे सकती है, उसी तरह वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में जो वास्तविक सत्य है उनकी अधिकारी वही है ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद मुनि, शातु गुरु, साधु और शास्त्र। तो हमें उनकी बातों को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 38 में, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय नयम् विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय नयम् विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि, यस्य मतलब जिनका, अवतार मतलब अवतार, कर्माणि यानी कार्यकलाप, गायन्ति महिमा का गायन करते ही निसंदेह अस्मित आदया हम जैसे व्यक्ति। ब्रह्मा जी कहते हम जैसे, अस्मद आदया मतलब हम जैसे व्यक्ति, उनको एक काम दिया जाता है कि भाई भगवान जब भी अवतार लेंगे, यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति, जब वो अवतार लेंगे तो कुछ न कुछ कार्यकलाप करेंगे। तो आप क्या करना, उनके अवतारों के कार्यकलापों का गायन करना, और हम वही कर सकते हैं। बाकी नयम विदंती तत्वेन, उनको तत्व से, न यम, न मतलब नहीं, यम मतलब जिनको, विदंती जानते हैं, तत्वेन शत प्रतिशत उसी रूप में, उनको उनके वास्तविक स्वरूप में 100% जानना तो संभव ही नहीं है, वो तो हम नहीं कर सकते। बस भगवान जब अवतार लेते हैं और जो काम करते हैं उनको हमको गाने का ये सौभाग्य मिलता है, उनके कर्मों को गाने का, बाकी उनको वास्तव में जानना संभव नहीं है। उनको तो केवल तस्मै भगवते नमः, वो भगवान है, वो असीम है, इसलिए उनको तो केवल शरणागत होना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अनुवाद, हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से जाने जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात समान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम जितना जितना भगवान के शरणागत होंगे ना, जितना जितना भगवान के प्रति सिंसियरली नाम जप करेंगे, सिंसियरली भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, चरण कमलों की पूजा करेंगे, तो भगवान हमारी सेवान्मुखी जब प्रसन्न होंगे ना, तो फिर क्या होगा, स्वयं ही वह सफूर्तियादा स्वयं अपने आप को हमारे सामने उतना ही प्रकट करेंगे जितना कि हम सिंसियर होंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर होना चाहिए। जो जो प्रमाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती हैं, त्यों त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्त संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों के से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्रील प्रभुपाद जी पुनः एक बार याद करा रहे हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है भगवान को समझने का। जब हम गुरु परंपरा से जुड़ते हैं तो वो परंपरा जब हमारी सहायता करती है, तब कहीं जाकर हम भगवान के साकार स्वरूप से की वास्तविकता को समझने में या उनको शरणागत होने में कुछ समर्थ होते हैं। जो गुरु परंपरा में नहीं जुड़ता, वो भले ही कितना ही अच्छा शब्द जाल प्रस्तुत करे, भले ही लोगों को कितना ही अपने शब्दों के जाल में फंसाए, परंतु वो स्वयं भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि उसके पास कोई बैक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्ति अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक की के प्रसंग में हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तश्रद्धदाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु तत्श्रद्धदानाया मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। वो भक्ति जो श्रवण करने से हृदय में उत्पन्न होती है, उस भक्ति के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि के द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें यही समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि भगवान को समझने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति करना सुलभ है। वो कैसे है? जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि का पालन करते हैं, अपने इस पूरे जीवन को भगवान के समर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा और भगवान के पवित्र शब्दों को श्रवण करना, उनका प्रचार करना और भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, हर समय तत्पर रहना। जब भगवान हमारी सिंसियरिटी को देखेंगे, जब हमारे प्रयास को देखेंगे, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर हमें अपना साक्षात्कार करेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते भगवान को बाध्य नहीं कर किया जा सकता कि भाई अब तो हमने इतनी भक्ति की अब हमारे सामने प्रकट हो नहीं। वो किस तरह से प्रसन्न होते हैं, वो किस तरह से हम पर अपनी अनुकृपा करते हैं, कितनी अनुकंपा कब करते हैं, ये सब उनके अपने अख्तियार में है। हमारा कोई दावा नहीं हो सकता, बस हमें एक ही कार्य करना है जो गुरु महाराज ने बताया, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आपको चार नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, इससे क्या होगा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो एक अंग्रेज शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी से बोला, स्वामी जी आपके कहने के अनुसार यदि मैं चार नियम का पालन करूं और 16 माला जप करूं लेकिन फिर भी मृत्यु तक यदि हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होगा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा है। तब उसने कहा आपने तो कहा है चार नियम का पालन करो 16 माला जप करो, वो यदि मैं कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है। बोला आपने तो कहा है कि चार नियम का पालन करो 16 माला जप करो, इसके बावजूद भी यदि हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या करूं। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है। बोला आपने तो कहा है चार नियम का पालन करो 16 माला जप करो, लेकिन वास्तविक लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है ना, वो अगर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूं। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जो जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो, चार नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, भागवत और गीता को श्रवण करो, भक्तों का संग करो, मंगला और संध्या करो, जो खाओ भगवान को अर्पण करो, फिर भी यदि प्रेम उत्पन्न न होना तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी है, मैं स्वयं हाथ पकड़ के तुम्हें कृष्ण धाम में लेके जाऊंगा। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं, हमें उनके हर आदेश को पालन करना है, अवश्य कृष्ण कृपा करेंगे, अवश्य जीवन सफल होगा, अवश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ अपने कार्य को करते जाना है और हृदय में एक आस हमेशा रहनी चाहिए, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्ण अवश्य हमें स्वीकार करेंगे, कृष्ण अवश्य हमें अपना लेंगे। इस विश्वास के साथ इस जीवन को काटना है, यही जीवन हमें कृष्ण प्राप्ति करने में सहायता करेगा और यही रूल्स जो गुरु महाराज ने हमें दिए हैं वो ही हमें कृष्ण धाम तक लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत छोड़िएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।